लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे धर्म शिक्षकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें ईश वचन की घोषणा करने के लिए बुलाया गया है, ताकि वे साहस एवं रचनात्मकता के साथ तथा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सुसमाचार के साक्षी बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei approfondire la figura di San Giuseppe come padre nella tenderezza.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज मैं संत योसेफ की छवि को एक सुकोमल पिता के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैंने अपने प्रेरितिक पत्र पात्रिस कोर्दे में संत योसेफ के इस व्यक्तित्व पर चिंतन प्रस्तुत किया था। वास्तव में सभी सुसमाचार हमें इस तथ्य का वृतांत प्रस्तुत नहीं करते हैं कि संत योसेफ ने पिता के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन किस रूप में किया। हम केवल इस बात से सुनिश्चित होते हैं कि वे एक धर्मी पुरुष थे। उन्होंने यीशु की शिक्षा दीक्षा का ख्याल रखा। योसेफ ने यीशु को ज्ञान में, उम्र में और मनुष्य के मध्य ईश्वरीय अनुग्रह में दिन ब दिन बढ़ते देखा। जिस भांति याहवे ने इसराइली प्रजा के साथ किया, वैसे ही योसेफ ने यीशु के साथ किया। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाया। वे यीशु के लिए उस पिता की भांति थे जो एक शिशु को गले से लगाते, घुटनों में झुककर उसे खाना खिलाते हैं। धर्म ग्रंथ की यह परिभाषा बहुत सुंदर है, जो ईश्वर का इसराइली जनता के संग उनके प्रेम को व्यक्त करता है। हम यूसुफ को यीशु के संग इसी संबंध में पाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
इवांजेली attestano che Gesù ha usato sempre la parola padre per parlare di Dio e del suo amore.
सुसमाचार हमें इस बात को प्रस्तुत करता है, प्रेम में यीशु ने ईश्वर के लिए सदैव पिता शब्द का प्रयोग किया। हम बहुत से दृष्टांतों में पिता के इस रूप को एक नायक की भांति पाते हैं। इसमें एक अति प्रसिद्ध दृष्टांत, जिसे संत लूकस का सुसमाचार करुणावान पिता स्वरूप प्रस्तुत करता है। यह दृष्टांत न केवल पापों के अनुभव और पाप क्षमा पर जोर देता, बल्कि क्षमा दान के उस रूप को जो गलती किए व्यक्ति के लिए प्रकट होता है। संत लूकस के पद हमें कहते हैं, वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। पुत्र अपने लिए सजा की चाह रखता था, एक न्याय जहां वह अपने को नौकरों में से एक होने की सोचता, लेकिन वह अपने को पिता के आलिंगन से भरा पाता है। करुणा अपने में वह चीज है जो दुनिया के तर्क से बढ़कर है। यह हमारा न्याय आश्चर्यजनक रूप में करती है। संत पापा ने कहा कि यही कारण है कि हम यह कभी न भूलें कि ईश्वर हमारे पापों से, गलतियों से, हमारी असफलताओं से भयभीत नहीं होते हैं, बल्कि वे हमारे हृदय के बंद होने से भयभीत होते हैं। वे उनके प्रेम में हमारे विश्वास की कमी से डरते हैं। हमारे लिए इस बात पर विचार करना कितना सुंदर है कि इस सत्य को यीशु के संग साझा करने वाले पहले व्यक्ति स्वयं संत योसेफ थे। ईश्वरीय चीजें सदैव हमारे लिए मानवीय अनुभवों के माध्यम आती हैं। संत पापा ने धर्म ग्रंथ के दृष्टांत पर एक सच्ची घटना को सभों के संग साझा करते हुए कहा, कि युवाओं के एक दल ने करुणामय पिता के इस दृष्टांत से प्रभावित होकर इसका मंचन किया। यह अपने में बहुत ही सफल रहा। संगीतमय नाटक मंचन के उपरांत एक मित्र को यह मालूम हुआ कि एक पुत्र जो अपने पिता से दूर चला गया है, अपने पिता के घर लौटने की चाह रखता है, लेकिन वह भयभीत है कि कहीं उसका पिता उसे दंडित करते हुए भगा ना दे। उसके मित्र ने उसे सुझाव देते हुए कहा कि तुम एक संदेश भेजो कि तुम घर लौटना चाहते हो, और यदि तुम्हारा पिता तुम्हें स्वीकार करे तो एक खिड़की में रुमाल बांधकर इसे इंगित करे। यह सुझाव कारगर सिद्ध होता है। जब वह पुत्र घर की राह में होता तो वह खिड़की में एक नहीं अपितु कई सफेद रुमालों को बांधा हुआ पाता है, हर एक खिड़की में 3 से 4 रुमाल। ईश्वर की करुणा हमारे लिए ऐसा ही है। वे हमारे अतीत से, हमारी बुरी चीजों से भयभीत नहीं होते हैं। हमारे लौटने पर वे हमें अपनी बाहों में भर लेते हैं। संत पापा ने कहा, अतः हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि यदि हमने ऐसी करुणा का अनुभव किया है, क्या हम इसके साक्षी बने हैं? क्योंकि करुणा अपने में एक भावना या संवेदनशील बात नहीं है, यह प्रेम किए जाने की अनुभूति है, जहां हम अपनी दयनीय स्थिति और बदहाली में स्वागत किए जाते हैं, जो ईश्वरीय प्रेम में हमें परिवर्तित करता है।
Dio non fa affidamento solo sui nostri talenti, no, ma anche sulla nostra debolezza redenta.
ईश्वर केवल हमारे गुणों में आश्रित नहीं होते, बल्कि वे हमारी कमजोरियों में निर्भर रहते हैं, जिनसे वे हमें मुक्त करते हैं। संत पौलुस इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि हमारी कमजोरियों में भी ईश्वर की एक योजना है। वास्तव में वे कुरिन्थियों के समुदाय को लिखते हैं, मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया, मुझे शैतान का एक दूत मिला, वह मुझे घुस से मारता रहे। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूपेण प्रकट होता है। प्रभु हमारी सभी कमजोरियों को दूर नहीं करते हैं, वे हमारी कमजोरियों के साथ चलने में मदद करते हैं, वे हमारा हाथ थाम लेते हैं, वे हमारी कमजोरियों को हाथ में लेते हैं, और यही उनकी कोमलता है। इस कोमलता के अनुभव में हम ईश्वर की शक्ति को उस तरह से गुजरते हुए देखते हैं जो हमें सबसे कमजोर बनाती है। वैसे परिस्थिति में हम अपने को बुराई की निगाहों से देखते, जो हमें हमारी कमजोरियों को दिखलाता और उनकी निंदा करता है, जबकि पवित्र आत्मा प्रेम में हमें उन्हें आलोकित करता है। कोमलता हमारे भीतर की कमजोरियों को छूने का सबसे अच्छा तरीका है। यही कारण है कि यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां हमारा मिलन ईश्वरीय दया से होती है, विशेष रूप से मेल मिलाप के संस्कार में, जहां हम उनकी सच्चाई और कोमलता का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत बुराई भी हमारे लिए सच्चाई को प्रस्तुत करती है, यद्यपि यह केवल हमें दोषी करार देती है। हम जानते हैं कि ईश्वरीय सच्चाई हमें दोषारोपित नहीं करती, बल्कि यह हमारा स्वागत करती, हमें गले लगाती, हमें बनाए रखती और हमें क्षमा करती है। संत पापा फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर हमेशा माफ करते हैं। हम इसे अपने दिल और दिमाग में रखें, वे हमेशा क्षमा करते हैं। हम माफी मांगते थक जाते, लेकिन वे हमें हमेशा माफ करते हैं, चाहे चीजें कितनी भी बुरी क्यों ना हों। संत पापा ने कहा कि संत योसेफ के संरक्षण को अपने लिए देखना हमारे लिए हितकर है। हमें अपने में यह पूछने की जरूरत है कि क्या हम अपने को ईश्वरीय कोमलता में प्रेम करने देते हैं, जो हममें से प्रत्येक जन को परिवर्तित करते और ऐसा ही प्रेम करने के योग्य बनाते हैं। इस कोमलता की क्रांति के बिना हम एक ऐसे न्याय में कैद रहते हैं जो हमें आसानी से उठने नहीं देती है और जो मुक्ति को सजा के रूप में भ्रमित करती है। उन्होंने कहा,
Oggi voglio ricordare in modo particolare i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in carcere.
आज मैं उन भाई बहनों की विशेष याद करना चाहूंगा जो कैद खाने में बंद हैं। यह उचित है कि जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा की आवश्यकता है, लेकिन यह उससे भी न्यायोचित है कि जिन्होंने गलती की है वे अपनी गलती से अपने को मुक्त करें। ऐसी कोई सजा नहीं जिसमें आशा का अभाव हो। आइए हम जेल में बंद अपने भाइयों और बहनों के बारे में सोचें। हम उनके लिए ईश्वर की कोमलता के बारे में सोचें और प्रार्थना करें ताकि वे आशा में एक बेहतर जीवन हेतु मार्ग खोज सकें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने संत योसेफ से प्रार्थना की। संत योसेफ करुणावान पिता, हमें यह स्वीकारने की शिक्षा दे कि हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी में खासकर प्रेम किए जाते हैं। हमें कृपा दे कि हम अपनी दरिद्रता और ईश्वरीय महान प्रेम के मध्य बाधा उत्पन्न ना करें। हम हमें मेल मिलाप के भाव जागृत कर, जिससे हम क्षमा प्राप्त करें और अपने भाई बहनों को करुणा में प्रेम करने के योग्य बना सकें, जो निर्धनता की स्थिति में हैं, उनके निकट रह जिन्होंने गलती की है और उसकी सजा काट रहे हैं। उन्हें न केवल न्याय पाने बल्कि करुणावान बनने में मदद कर, जिससे वे नई शुरुआत कर सकें, और उन्हें इस बात की शिक्षा दे कि फिर से शुरू करने का पहला तरीका पिता के दुलार को महसूस करने हेतु ईमानदारी से क्षमा याचना करना है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Pater, Fili, Spiritus Sancti. Amen.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों को टोंगा द्वीप समूह में आए आपदा से पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने और समर्थन देने की अपील की। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के दौरान विश्वासियों और तीर्थयात्रियों से हाल ही में टोंगा द्वीप समूह में हुए ज्वालामुखी के विस्फोट से प्रभावित पीड़ितों को याद किया और उनके लिए अपनी निकटता व्यक्त करते हुए प्रार्थना की अपील की। संत पापा ने कहा, मेरे विचार टोंगा द्वीप समूह की आबादी के लिए जाते हैं, जो हाल के दिनों में पानी के नीचे ज्वालामुखी के विस्फोट से प्रभावित हुए हैं, जिससे द्वीप को व्यापक क्षति पहुंची है। मैं आध्यात्मिक रूप से सभी प्रभावित लोगों के करीब हूँ और ईश्वर से उनकी पीड़ा से उबरने हेतु प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद संत पापा ने वहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों से टोंगा द्वीप के पीड़ित भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना में शामिल होने की अपील की। विदित हो कि टोंगा द्वीप में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी ने 15 जनवरी को खतरनाक रूप ले लिया। सैटेलाइट की तस्वीर में राख, भाप और गैस की धुओं को करीब 5 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर ऊंचा उठते देखा गया। कुछ ही मिनट के अंदर ज्वालामुखी ने 1.2 मीटर सुनामी उत्पन्न किया, जिसने टोंगा की राजधानी नुकू अलोफा के तटीय इलाके को पानी से भर दिया। ये ज्वालामुखी विस्फोट पिछले लगभग 30 वर्षों में सबसे विशाल था। एक अंतरजलीय ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट और इसकी वजह से आई सुनामी के बाद टोंगा में अधिकारियों ने अब तक कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। टोंगा की सरकार ने इसे अभूतपूर्व आपदा बताया है। देश की एकमात्र इंटरनेट की तार कट गई, सिर्फ कमजोर सैटेलाइट फोन कनेक्शन, सर्वेलियंस उड़ानों और सैटेलाइट चित्रों की मदद से क्षति का सही अंदाजा लगाना अभी भी मुश्किल है। इन कठिनाइयों के बावजूद यूनिसेफ ने उपलब्ध जानकारी और सरकारी भागीदारों के साथ समन्वय के आधार पर प्रतिक्रिया शुरू की है। ब्रिस्बेन की ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मानवीय गोदाम में पहले से तैनात यूनिसेफ की आपातकालीन आपूर्ति के लगभग 44 पैकेट को रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के HMAS एडिलेड जहाज पर पैक और लोड किया गया था, जो टोंगा के लिए एक मानवीय मिशन पर है। यूनिसेफ अभियान में पानी और स्वच्छता सेवाओं और मनोरंजन किट की आपूर्ति शामिल है। यूनिसेफ ने पोर्टेबल पानी विश्लेषण किट के साथ घरेलू वॉशिंग किट और स्वच्छता किट, बाल्टी, कनस्तरों के 1000 सेट भेजा। फिजी में
यूनिसेफ स्टॉक से क्लोरीन टेस्टर और जल शोधन टैबलेट परिवहन उपलब्ध होते ही डिलीवरी के लिए तैयार हैं। बच्चों के लिए मनोसामाजिक गतिविधियों के लिए लगभग 50 मनोरंजक किट हैं। आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा कलीसिया के स्वयं सेवकों के माध्यम से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में कैथोलिक कलीसिया 19 से 27 जनवरी को अपना वार्षिक जीवन के लिए 9 दिन नोवेना आयोजित कर रही है, जो वाशिंगटन में जीवन के लिए 49वां वार्षिक जुलूस के साथ मेल खाता है। प्रत्येक दिन एक विषय पर चिंतन, शैक्षिक जानकारी दी जाती है और जीवन की संस्कृति के निर्माण में मदद करने के लिए दैनिक कार्यों का सुझाव दिया जाता है। प्रतिभागी अपने जीवन समर्थक गवाह को साझा कर सकते हैं और अपने सोशल नेटवर्क में हैशटैग जीवन के लिए 9 दिन के साथ सोशल मीडिया पर प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन की जीवन समर्थक गतिविधियों के लिए बनी समिति द्वारा प्रायोजित जीवन के लिए 9 दिन सुप्रीम कोर्ट के 1973 के रो वी वेड फैसले की 40वीं वर्षगांठ को याद करने के लिए 2013 में शुरू हुए, जिसने देश में गर्भपात को वैध बनाया था। नोवेना में 22 जनवरी को अजन्मे बच्चों की कानूनी संरक्षण के लिए प्रार्थना का वार्षिक दिवस शामिल है, जिस दिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और यह वाशिंगटन डीसी में जीवन के लिए वार्षिक जुलूस के साथ मेल खाता है। इस वर्ष का जुलूस 21 जनवरी को आयोजित किया जाना है और गर्भ में समानता शुरू होती है, इस विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विषय इस बात पर प्रकाश डालती है कि सच्ची समानता केवल तभी संभव है जब हम यह मान लें कि बच्चे गर्भ में भी सुरक्षा के पात्र हैं। जीवन के लिए 49वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्थानीय जुलूस, रैलियां, पवित्र मिसा समारोह और प्रार्थना कार्यक्रम भी पहले से ही पूरे अमेरिका में राष्ट्रीय जुलूस की अगुवाई में हो रहे हैं। उधर यूरोपीय संघ में माल्टा के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के प्रतिनिधि धर्माध्यक्ष जोसेफ गैलिया कुर्मी का कहना है कि उन्हें गर्व है कि यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष उनके ही देश माल्टा की हैं और यूरोपीय संघ के सांसदों और कलीसिया के बीच एक उपयोगी कामकाजी संबंध के लिए विश्वास व्यक्त करते हैं। माल्टीज सांसद रोबर्टा मेटसोला को यूरोपीय संसद का प्रमुख चुना गया है। यूरोपीय संघ के सबसे छोटे राष्ट्र की 43 वर्षीय राजनेता सांसद चलाने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष हैं। उन्होंने यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डेविड सासोली के स्थान पर पदभार ग्रहण किया, जिनकी पिछले सप्ताह अचानक मृत्यु हो गई। रोबर्टा मेटसोला यूरोपीय पीपुल्स पार्टी के सदस्य प्रमुख राजनीतिक समूहों द्वारा किए गए एक सौदे के तहत इतालवी सांसद प्रमुख सासोली के स्थान को लेने हेतु योग्य उम्मीदवार थीं। उन्होंने सासोली के चेंबर के शीर्ष उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया और जैसा कि माल्टीज धर्माध्यक्ष जोसेफ गैलिया कुर्मी कहते हैं, वे अपनी भूमिका में अपने अनुभव और गहराई से यूरोपीय मूल्यों को लाती हैं। वाटिकन रेडियो से फ्रांसिस्का मेरलो के साथ हुए एक साक्षात्कार में माल्टा के सहायक धर्माध्यक्ष कहते हैं कि रोबर्टा मेटसोला युवा हैं लेकिन अनुभवी हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।